नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज शाम इटली रवाना होंगे। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा नेता पेमा खांडू ने लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट में 1500 से अधिक छात्रों को दिए गए ग्रेस अंक रद्द किए गए। सरकार ने कहा प्रश्न पत्र लीक होने का कोई सबूत नहीं मिला। कुवैत की एक इमारत में भीषण आग लगने से 40 भारतीय नागरिकों सहित 49 विदेशी श्रमिकों की मृत्यु। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भारतीय नागरिकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के लिए कुवैत पहुंचे। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में आकर्षि कश्यप महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में और बी सुमित रेड्डी और एन सिक्की रेड्डी की मिक्स डबल्स जोड़ी भी अंतिम 8 में पहुंची। दोपहर समाचार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज इटली रवाना होंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि भारत को शिखर सम्मेलन में संपर्क देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। लगातार तीसरे कार्यकाल में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली विदेश यात्रा होगी। श्री क्वात्रा ने कहा कि सम्मेलन में भारत और अल्प विकसित देशों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक नेताओं के साथ विचार विमर्श का महत्वपूर्ण अवसर होगा।
This will be Prime Minister's first overseas travel after resuming office in his third consecutive term. It will also afford him an opportunity to engage with other world leaders present at the G7 summit on issues of importance to India as also to the global south.
हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
G7 समूह की स्थापना 1973 में हुई ऊर्जा संकट के दौरान आर्थिक और वित्तीय सहयोग के लिए की गई थी। यह विश्व के 7 देशों का एक साझा मंच है जिसमें इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इस शिखर सम्मेलन में भारत की 11वीं और श्री मोदी की लगातार 5वीं भागीदारी होगी। 3 दिनों तक चलने वाला यह शिखर सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कल आउटरीच सत्र में भाग लेंगे। सम्मेलन से अलग श्री मोदी की G7 देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की संभावना है। इसके अलावा श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात पिछले साल अबू धाबी में COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पेमा खांडू ने लगातार तीसरी बार आज अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ईटानगर में आयोजित समारोह में श्री पेमा खांडू के साथ 11 अन्य विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई।
अरुणाचल प्रदेश में वरिष्ठ भाजपा नेता पेमा खांडू ने आज तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ईटानगर के टीके कन्वेंशन हॉल में आयोजित समारोह में उनके साथ 11 अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक ने मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य कैबिनेट मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, रविशंकर प्रसाद, असम और सिक्किम के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू तथा अरुणाचल पूर्व संसदीय क्षेत्र के सांसद तापिर गाओ उपस्थित थे। मीडिया से बात करते हुए श्री खांडू ने कहा कि राज्य सरकार राज्य के विकास के लिए पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने का काम करेगी। राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया।
केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि 1563 नीट छात्रों को MBBS, BDS और अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए अतिरिक्त अंक देने का फैसला रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को केंद्र तथा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि जिन विद्यार्थियों को अतिरिक्त अंक मिले थे उनके पास 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प रहेगा। एजेंसी ने कहा कि पहले से घोषित काउंसलिंग कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि दोबारा होने वाली परीक्षा के परिणाम 30 जून तक घोषित किए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आज इस बात को दोहराया कि वो नीट यूजी 2024 प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएगा। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक होने का कोई सबूत नहीं मिला है। नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने छात्रों और अभिभावकों को आश्वासन दिया कि केंद्र उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और परीक्षा के संबंध में शिक्षाविदों की एक समिति भी बनाई गई है।
आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा, लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से न्याय देने के लिए। पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है।
दोपहर समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह आज मनगांव पहुंच चुके हैं, जहां वे आग दुर्घटना में घायलों को दी जा रही सहायता का निरीक्षण करेंगे। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य दुर्घटना में मरने वालों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने के बारे में स्थानीय अधिकारियों से तालमेल बनाए रखना है। कुवैत पहुंचने के बाद श्री कीर्ति वर्धन सिंह कल की आग दुर्घटना में घायल व्यक्तियों से मुलाकात करने के लिए तुरंत जाबिर अस्पताल पहुंचेंगे। अस्पताल में भर्ती छह घायलों से मुलाकात की और कुवैत स्थित भारतीय दूतावास को सूचित किया कि सभी घायल सुरक्षित हैं। भारत ने पापुआ न्यू गिनी के इंगा प्रांत में विनाशकारी भूस्खलन से उत्पन्न तबाही से निपटने के लिए लगभग 19 टन सहायता सामग्री लेकर एक विमान रवाना कर दिया है। पिछले महीने भारत ने पापुआ न्यू गिनी के लिए 10 लाख अमरीकी डॉलर सहायता पैकेज की घोषणा की थी। उसने सहायता के अपने मंच प्रशांत सागर द्वीप सहयोग संस्थान FIPIC के प्रति अपनी वचनबद्धता के निर्वहन के तौर पर सहायता की वर्तमान खेप भेजी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि सहायता की इस खेप में 13 टन आपदा राहत सामग्री भेजी गई है। कुवैत में हुई आग दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। कुवैत के दक्षिण मनगांव क्षेत्र में स्थित भवन में आग लग गई थी, जिसमें 49 लोगों की मृत्यु हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। एक रिपोर्ट।
कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अल याहिया और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अहमद अल आवाजी ने घायलों का हालचाल पूछा। एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि सरकार घायलों को अधिकतम स्वास्थ्य संबंधी सेवा उपलब्ध करा रही है। इस बीच प्रवासी केरल भारतीयों के मामलों से संबद्ध संस्थान नॉर्का रूट्स ने दुर्घटना के पीड़ितों के लिए विशेष सहायता डेस्क स्थापित किया है, जिसके टोल फ्री नम्बर 24 घंटे उपलब्ध हैं। भारतीय ये जानकारी फोन नंबर 1800-425-3939 और विदेशों से 9188-02-01-2345 से मिस कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तमिल प्रवासी पुनर्वास और कल्याण कमीशन के हेल्पलाइन नंबर हैं 9118003093793, 9180690009001, 9180690009001। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से स्पर्श सक्सेना।
कुवैत आग दुर्घटना को देखते हुए केरल मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक में राज्य के प्रत्येक पीड़ित को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया गया है। केरल के कुछ प्रवासी व्यवसायियों ने भी अतिरिक्त राशि देने का निर्णय किया है। वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट पेश करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला और बजट के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। सरकार ने अगले 5 वर्ष में देश के रक्षा निर्यात को बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए तक करने का लक्ष्य रखा है। अपने मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब तक 21,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा साजो सामान का निर्यात कर चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत विकसित करने की इच्छुक है। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा और सुरक्षा बलों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है।
हमारी सेना का मनोबल पहले भी ऊंचा रहा है और आगे भी ऊंचा बना रहे हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न ही होगा, क्योंकि जिस शौर्य और पराक्रम का समय आने पर हमारी सेना ने परिचय दिया है और हमारी तीनों सर्विसेज, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं कहना चाहता हूं अपने तीनों सर्विसेज की सेना पर मुझे गर्व है।
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ आईओए कार्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक की और पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में रक्षा खड़से और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी ऊषा ने कहा कि सभी तैयारियां हो चुकी हैं और खिलाड़ियों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने 180 दिन पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आज भोपाल से पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस हवाई सेवा के लिए बुकिंग काउंटर की शुरुआत की और यात्रियों को बोर्डिंग पास उपलब्ध कराए। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के राजा भोज विमानतल पर पीएमसी पर्यटन वायु सेवा के संचालन का शुभारंभ विमान को हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की इस सौगात से किसी भी सामान्य व्यक्ति को आने जाने में आसानी होगी।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 55 जिलों में से 30 हमारी हवाई पट्टियां हैं जिसका हम तुरंत विकास करेंगे।
पीएमसी पर्यटन वायु सेवा के तहत प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार ने पहले ही एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है जो आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
ओडिशा में नवनियुक्त मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की उपस्थिति के दौरान आज सुबह पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर के चारों कपाट खोल दिए गए हैं। मंदिर के तीन द्वार जो कोविड महामारी के समय से बंद थे वो आज मंगल आरती के बाद खोल दिए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी आकर्षी कश्यप ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की काई क्यू ही तेहो को 21-16, 21-13 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मिक्स डबल्स मुकाबले में बी सुमित रेड्डी और एन सिक्की रेड्डी की भारतीय जोड़ी ने काई चेन त्यो और ऑस्ट्रेलियन काई चेन तेहो को सीधे सेटों में हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने अमेरिका को 7 विकेट से हराकर सुपर 8 में जगह बना ली है। मेजबान वेस्टइंडीज ने भी आज न्यूजीलैंड को 13 रन से पराजित कर सुपर 8 में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज ही बांग्लादेश का सामना नीदरलैंड से होगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर ताड़ासन का एक वीडियो साझा किया है। इसे साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ताड़ासन शरीर के लिए बहुत लाभकारी है और इससे शरीर मजबूत और सुदृढ़ होता है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार में अगले 2 दिन, झारखंड में अगले 3 दिन और उत्तर प्रदेश में अगले 3 से 4 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हज यात्रा के लिए 1,75,000 भारतीय जायरीन मक्का और मदीना पहुंच गए हैं। इनके लिए भारत सरकार ने विशेष प्रबंध किए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज शाम इटली रवाना होंगे। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा नेता पेमा खांडू ने लगातार 3री बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट में 1,500 से अधिक छात्रों को दिए गए ग्रेस अंक रद्द किए गए। सरकार ने कहा प्रश्न पत्र लीक होने का कोई सबूत नहीं मिला। कुवैत की एक इमारत में भीषण आग लगने से 40 भारतीय नागरिकों सहित 49 विदेशी श्रमिकों की मृत्यु। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर को शीघ्र स्वदेश लाने के लिए कुवैत पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।